ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में 108 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने नक्सलियों के विभिन्न डंप से 100 से अधिक हथियार, करीब 3.5 करोड़ रुपए नगद और सोना भी बरामद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में इलाज न होने का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले की विभागीय समीक्षा कराई जाएगी और नवा रायपुर में 13 मार्च से आदि परब का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आज 108 माओवादियों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें 44 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन माओवादी कैडरों पर कुल 3.29 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में सक्रिय थे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के कारण माओवादी अब हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में रहे हैं। श्री शर्मा ने दोहराया कि आगामी 31 मार्च तक राज्य में नक्सलवाद समाप्त करने का हमारा लक्ष्य पूरा होगा।
पुनर्वास करने वालों में डीवीसीएम लेवल के 6 नक्सली हैं, 101 वेपन वापस आ रहे हैं। ये बड़े प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। बहुत सारा एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है। 30 एरिया कमिटीज लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे आते हैं, उसमें से 26 एरिया कमिटी लगभग क्लियर हो चुके हैं। 4 एरिया कमिटीज में अभी काम करना शेष रह गया है, उस पर भी काम जारी है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगी।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि इन माओवादियों के आत्मसमर्पण से न केवल उन्हें आर्थिक क्षति पहुंची है बल्कि इससे वे हतोत्साहित भी हुए हैं।
माओवादियों का जो सैनिक जो ताकत है उसमें 101 हथियार जब्त होने से और उनके लगभग कैश और सोना मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर की राशि का उनका काफी आर्थिक क्षति भी हुआ है और 108 जो माओवादी कर संगठन से बाहर आने से भी उनके लिए काफी बड़ी एक झटका के रूप में हम देख रहे हैं। विगत 2 वर्ष की बात करेंगे बस्तर संभाग के अंतर्गत 2000 से अधिक जो माओवादी कर हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्यधारा में शामिल हुई है।
गौरतलब है कि आत्मसमर्पित माओवादियों की सूचना के आधार पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों के डंप भी बरामद किए हैं। इनमें 7 AK-47 राइफल, 4 लाइट मशीन गन, 11 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित 101 हथियार शामिल हैं। इसके अलावा माओवादियों द्वारा एक स्थान पर छिपाकर रखी गई करीब 3.60 करोड़ रूपये की नगद रकम और 1 किलो सोना भी बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर में अब बंदूक नहीं बल्कि विश्वास की जीत रही है। उन्होंने कहा कि इन माओवादियों का समाज की मुख्यधारा में लौटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बस्तर में शांति, सुशासन और विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के मद्देनजर रसोई गैस की आपूर्ति सुगम बनाए रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी के साथ ही पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही रसोई गैस की बुकिंग करें। इस बीच खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज मंत्रालय में ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में घरेलू एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में संचालित सभी 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। खाद्य सचिव ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1-800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में भी कलेक्टरों ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को फिलहाल रोका गया है लेकिन अस्पतालों, स्कूलों और छात्रावासों में आवश्यकतानुसार एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति जारी है।
फिलहाल ये निर्देश है कि कमर्शियल कनेक्शंस जो हैं उनको रोका गया है लेकिन इसमें भी जो लोग हॉस्पिटल या स्कूल संस्थाएं, हॉस्टल्स वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं जहां पर, उन संस्थाओं को उसमें छूट दी गई है तो उनकी जहां भी आवश्यकता है उनको सिलेंडर अभी भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने बालोद जिले में हुए जम्बूरी कार्यक्रम के दौरान किए गए खर्चों का मुद्दा उठाया। उन्होंने विभागीय मंत्री से आय व्यय की जानकारी मांगी। इस पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग मदों में किए गए खर्चों का ब्यौरा पेश किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जम्बूरी कार्यक्रम भारत स्काउट गाइड के तय मानकों के हिसाब से हुआ है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य कांग्रेस विधायकों ने इस आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा समिति से इसकी जांच कराने की मांग की। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। राज्य विधानसभा में आज प्रदेश में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होने का मुद्दा भी गूंजा। विपक्षी सदस्य कविता प्राण लहरे ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सवाल किया कि निजी अस्पतालों में हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और अमर अग्रवाल ने भी इसे जनहित से जुड़ा संवेदनशील मामला बताया। आसंदी ने भी कहा कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री को जल्द निर्णय लेना चाहिए। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी एक सप्ताह में विभागीय समीक्षा कराकर अधिक से अधिक अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल सके, इस पर निर्णय लिया जाएगा। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष के विधायक ऋकेश सेन को जान से मारने की धमकी देने का मुद्दा उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में अब तक सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है। इस पर आसंदी ने कहा कि सरकार की जानकारी में ये बात आ गई है, वक्तव्य की जरूरत नहीं है। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा में आज लोक निर्माण विभाग में एसओआर से कम दर पर ठेका लेकर काम अधूरा छोड़ देने का मामला भी उठा। सभापति ने लोक निर्माण मंत्री अरुण साव को सुझाव दिया कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि आसंदी के निर्देश का सम्मान होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने कल शाम रायपुर में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बारे में बताया।
छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस ले जाने का भी अनुमोदन किया। इसके साथ ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने 6 अन्य संशोधन विधेयकों के प्रारूप का भी अनुमोदन किया। इनमें छत्तीसगढ़ उपकर, नगर तथा ग्राम निवेश, गृह निर्माण मंडल, कर्मचारी चयन मंडल तथा लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी विधेयक शामिल हैं। एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस भूमि पर अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 13 और 14 मार्च को परंपरा से पहचान तक की थीम पर आदि पर्व का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान की संचालक हिना अनिमेश नेताम ने आज रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए आयोजन के संबंध में जानकारी दी।
आदि पर्व में मुख्य आकर्षण आदि रंग, जो हमारे राज्य एवं राष्ट्रीय जनजातीय चित्रकला महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एक कंपटीशन है। दूसरा है आदि परिधान। छत्तीसगढ़ के जो 43 मुख्य जो जनजातियां है, उन जनजातियों के जो परिधान है उसको एक मंच पे लाने का एक प्रयास है। और थर्ड है आदि हाट, जिसमें हम लोग अलग अलग जिलों के जो बेहतरीन जो शिल्प कला है और व्यंजन है उसको एक मंच देने का कोशिश किया है।
कार्यक्रम के दौरान यूपीएससी की परीक्षा में चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी डायमंड सिंह ध्रुव और अंकित साकनी का सम्मान किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, गतिविधियों और राजधानी क्षेत्र के समग्र तथा योजनाबद्ध विकास की कार्य योजना पर चर्चा की गई। और दुर्ग के शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का जागरूकता और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में 108 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने नक्सलियों के विभिन्न डंप से 100 से अधिक हथियार, करीब 3.5 करोड़ रुपए नकद और सोना भी बरामद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में इलाज न होने का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले की विभागीय समीक्षा कराई जाएगी और नवा रायपुर में 13 मार्च से आदि पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।